नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत अमेरिकी कांग्रेस में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर उच्च शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर बारीकी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत वैश्विक बाजार की बदलती गतिशीलता और अपनी 140 करोड़ की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने की अनिवार्यता पर चलता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते में रुचि है और वे इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तत्पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही।
पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। पहले डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 2014 तक 46,000 करोड़ यानी केवल 46,000 करोड़ रुपए होता था और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हम 1.5 लाख करोड़ 1.51 लाख करोड़ से अधिक का डिफेंस प्रोडक्शन भारत की धरती पर कर रहे हैं।
रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निर्यात में भी कई गुना वृद्धि हुई है। पहले ये 1,000 करोड़ रुपए वार्षिक था जो अब बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए सालाना हो गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रक्षा निर्यात के 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए पार कर जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पर्व और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी कल सोमनाथ में ओंकार मंत्रोच्चारण में शामिल होंगे। वे सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अनगिनत योद्धाओं के सम्मान में आयोजित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि इस वर्ष 31 मार्च से देशव्यापी सामूहिक नशा मुक्ति अभियान शुरू किया जाएगा। 3 साल तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देश को नशा मुक्त बनाना है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा। श्री रिजिजू ने कहा कि यह सार्थक बहस और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रसार भारती के वेव्स प्लेटफॉर्म को वैश्विक स्तर पर व्यापक सराहना मिली है और इससे 5,000 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है। कंटेंट क्रिएटर्स को सशक्त बनाने के लिए डीडी न्यूज पर नए प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स कॉर्नर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य रचनात्मक सामग्री को प्रदर्शित करना और इसे बढ़ावा देना है। हिमाचल प्रदेश में आज सिरमौर जिले के हरिपुर धार के पास एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 12 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। ये बस सोलन से हरिपुर धार जा रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय और आवास पर छापेमारी और जांच में बाधा डाली। हालांकि अदालत में हंगामे के कारण सुनवाई स्थगित हो गई और न्यायालय ने मामले को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से राहत न मिलने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण निदेशालय ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 155 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।